मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए अब आज के मुख्य विषय के अंतर्गत जो प्रश्न मैंने आप सबको पढ़कर सुनाया था उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने लेवल पर इसका मूल्यांकन निश्चित रूप से कर लिया होगा। जो उत्तर मैंने आपको पढ़कर सुनाया था उसे आपने बार बार सुना होगा। जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को भी आपने बार बार पढ़ा होगा। उत्तर के बारे में जो निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को भी आपने दिमाग में रखा होगा। और इसके बाद जो मैंने उत्तर लेखन के चार मुख्य स्तंभ आपको बताए थे उनके आधार पर फिर आपने इस उत्तर का मूल्यांकन किया होगा। क्या आपको वे चारों स्तंभ याद हैं? अगर याद नहीं है तो मैं यहां एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा। जो पहला स्तंभ था, जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ था, वह था विचार और तथ्य। सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ। इसके बाद जो दूसरा स्तंभ था वो भाषा, एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति। तीसरा स्तंभ प्राथमिकता, प्रायोरिटीज, यानी कि जो तथ्य हैं उन्हें किस तरीके से प्राथमिकता के क्रम में रखा गया है या नहीं रखा गया है। जो चौथा स्तंभ है अभ्यास का, वह आपके लिए है। यहां आपको अभ्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए जब अभ्यास करने वाला स्टूडेंट उत्तर लिखता है तो साफ साफ समझ में बात आ जाती है कि नहीं, इस स्टूडेंट ने उत्तर लेखन का अभ्यास किया है। उसमें अनगढ़ता नहीं होगी, विचारों की स्पष्टता होगी, सारी चीजें उसी क्रम में उसी तरीके से उतरकर उत्तर में आएंगी जिस तरीके से आनी चाहिए। तो ये अभ्यास से ही सधता है। तो फिलहाल आप चौथे स्तंभ को उस रूप में चेक नहीं कर सकते जैसे कि आप तीन स्तंभों के बारे में कर सकते हैं। तो आइए अब मैं अपनी बात आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। आप सब अपने अपनी बातों से मेरी इन बातों को मिलाने की कोशिश कीजिए। फैक्ट्स देखिए, तथ्य देखिए, मूल्यांकन के आधार देखिए और फिर सच पूछिए। तो अपने अंदर ये क्षमता विकसित करने की कोशिश कीजिए कि नहीं, मुझे भी यदि किसी का मूल्यांकन करना है तो कुछ इसी तरीके से करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट इसी तरीके से करना होगा, लेकिन कुछ इसी तरीके से करना होगा। और जिस दिन आप मूल्यांकन करना सीख जाएंगे, मान करके चलिए कि उसी दिन आप उत्तर लिखना भी सीख जाएंगे। प्लीज इन दोनों को अलग अलग करके न देखें। आइए पहली बात, इसमें निर्देश दिया गया है 150 शब्दों में उत्तर दें, राइट? 150 शब्दों में। ये जो शब्द दिए जाते हैं इनका कोई तो उद्देश्य होगा ही, और यहां उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। उद्देश्य यह है कि आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया है बस उनके बारे में लिखें और उनके बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं बस केवल वे बातें ही लिखें। 150 शब्द, कम से कम 100 शब्दों में लिखने को कहा जाता है और ज्यादा से ज्यादा 250 शब्दों में लिखने को कहा जाता है, ये रेंज है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उत्तर लेखन का अभ्यास करें, तो जो आपका अभ्यास है वह शब्दों के इसी दायरे में होना चाहिए। अनावश्यक विस्तार में आप मत जाइए। ज्यादातर उत्तरों में मैंने पाया है कि शब्द कम नहीं होते, ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते। और कम शब्दों में अपनी बात को रख पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। जिनका दिमाग बहुत स्पष्ट होगा, विचार बहुत ठोस होंगे, तथ्य बहुत स्पष्ट होंगे दिमाग में, बिल्कुल उजाले की तरह मौजूद होंगे, वे ही कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह पाते हैं। इनफैक्ट मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो कहता कुछ नहीं है। बोलता बहुत ज्यादा है लेकिन कहता कुछ नहीं है। इसके आधार पर जब आप इस उत्तर का मूल्यांकन करेंगे, तो मैंने किया है, क्योंकि आपके पास लिखित रूप मौजूद नहीं था इसलिए आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि आप शब्दों की गणना कर सकें, लेकिन मेरे पास इसका लिखित रूप मौजूद है और मैंने इन शब्दों की गणना की है। शब्द हो रहे हैं लगभग 450। फ्रेंड्स, 450, 150 शब्दों में लिखना है। निर्देश है कि 150 शब्दों में आप लिखें। और लिख रहे हैं आप 450 शब्दों में, इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये निर्देश का उल्लंघन नहीं है? सामान्य तौर पर मुझे नहीं मालूम कि यूपीएससी क्या करता, मैं इसके बारे में इनफैक्ट नहीं जानता हूं, लेकिन यदि मैं एग्जामिनर होता तो मैं शुरू के 150-175 शब्द चेक कर लेता और इसके बाद जो भी लिखा गया है उसे काट देता और शुरू के 150-200 शब्दों के आधार पर मैं इस उत्तर का मूल्यांकन करके मार्क्स दे देता। तो ये बात मैं केवल अपनी तानाशाही के तहत कह रहा हूं या इसके पीछे कोई तर्क भी है? इसके पीछे तर्क है। तर्क देखिए ये है कि आप जब ऑप्शनल पेपर लिख रहे होंगे तो ऑप्शनल पेपर में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाता है मोटे तौर पर। मान लीजिए कि आप 7 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं, मान लीजिए, तो फिर यूपीएससी के निर्देश क्या हैं? यूपीएससी के बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि जो शुरू के आपके 5 क्वेश्चन होंगे कंटिन्यूएशन में, उन्हें चेक कर लिया जाएगा, उसके आधार पर आपको नंबर दे दिए जाएंगे और बाद के जो 2 प्रश्न हैं या जितने भी प्रश्न हैं उन सबको क्रॉस कर दिया जाएगा, उनको लिखा हुआ माना ही नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी सिद्धांत को मैंने यहां इस उत्तर पर लागू किया है। 150 शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा गया है तो शुरू के आपके 150 शब्द जांचे जाएंगे, 10% का आपको एक तरीके से माइलेज दे दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी, 10% कम या 10% अधिक। मैंने 250 शब्द कह दिए, ठीक है चलिए 10% से थोड़ा अधिक ही हो गया, और इसके बाद जो कुछ भी आपने लिखा है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, उत्तर लिखने के बारे में ये मेरा बहुत ही सिंसियर आपको एडवाइस है, बहुत ही सिंसियर एडवाइस है, और वो ये कि शब्द संख्या के निर्देश का पालन करें, यह एक मर्यादा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ टॉपर्स की यह बयानबाजी मैंने सुनी है कि नहीं नहीं, आपको उसका पालन करने की जरूरत नहीं है, आप जितने शब्दों में भी लिखना चाहें आप उतने शब्दों में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कितना सही कह रहे हैं कितना गलत कह रहे हैं, लेकिन मैं इस सिद्धांत को लेकर के चलता हूं कि यदि यूपीएससी के कोई निर्देश हैं तो हम सबको उन निर्देशों का पालन करना चाहिए बिना अपना दिमाग लगाए। और सीधी सी बात है कि अगर आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन आपको 200 शब्दों का लिखना है तो 4000 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं। इस बीच में आपको प्रश्नों के उत्तर सोचने भी हैं, थोड़ा सा हाथ को रेस्ट भी देना है, थोड़ा बहुत समय और भी इधर उधर लग जाता है। तो ऐसे में अगर आप 400 शब्दों में या 300 शब्दों में 150 शब्दों में लिखे जाने वाले उत्तर का जवाब देंगे तो प्रश्न पूरे कर ही नहीं पाएंगे, और जब प्रश्न पूरे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसका असर आपके मार्किंग पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप यहां एक तर्क दे सकते हैं कि सर कहां 20 के 20 क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो पाते हैं, 10-12 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ठीक ठाक बन पाते हैं, बाकी सामान्य तरीके से बनते हैं, कुछ तो छोड़ नहीं पड़ते हैं, तो जो 3 घंटे का समय है बेहतर है कि हम 12-13 क्वेश्चन में डिवाइड कर दें। वो आपकी बात सही हो सकती है व्यावहारिक स्तर पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, एग्जामिनर इसे अच्छे रूप में तो नहीं लेगा। तो दोस्तों, यदि आप इस आधार पर इस उत्तर का मूल्यांकन करेंगे तो आप बताइए कि कितने मार्क्स देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु, मैंने इससे ठीक पहले के डेली ऑडियो लेक्चर में 3 सीमा युक्त शब्द आपको बताए थे, मध्यकाल, मूर्तिकला या उसे मंदिरों की मूर्तिकला कह लीजिए, और सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व। मेरा पूरा विश्वास है कि इन तीनों को आपने इसके अंदर ढूंढने की कोशिश की होगी। क्या आपको वो मिले? और अगर मिले तो क्या ठोस तरीके से एक ही स्थान पर मिले, या कहीं ऐसा तो नहीं कि भटकते भटकाते आप वहां तक पहुंच पाए, या आपको ढूंढ करके निकालना पड़ रहा है कि कहां मध्यकाल है, कहां मूर्तिकला है और कहां सामाजिक जीवन है? आप अपने अनुभव बताइए, खुद सोचिए, या अगर आपका कोई मित्र है तो आप उसके साथ डिस्कस कीजिए कि आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आपको लगता है कि प्रश्न को समझा गया है और उसके आधार पर उत्तर लिखा गया है? आपका उत्तर होगा कि नहीं, और अगर आपका उत्तर है कि हां बिल्कुल उसी तरह से लिखा गया है, तो मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी तैयारी को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने की बात नहीं, बिल्कुल उलट दीजिए, आप ठीक नहीं समझ रहे हैं। पूछा कुछ गया है और लिखा कुछ जा रहा है, आप फिर से ध्यान से पढ़िए उत्तर को। चलिए मैं थोड़े से अंश पढ़ करके सुना देता हूं। हड़प्पा काल से गुप्त काल तक मूर्तिकला राजकीय संरक्षण के साथ निरंतर विकसित होती रही है। गुप्त काल के दौरान मूर्तिकला अपने विकास के चरम पर पहुंच गई, लेकिन बाद की शताब्दियों के दौरान गिरावट शुरू हुई। 7वीं-8वीं शताब्दी में मूर्तिकला फिर से एक नई मूल भावना के साथ, विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य भारत तथा कुछ हिमालयी राज्यों में मंदिर स्थापत्य के साथ यह लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देने लगती है। कोई बात कही गई है? बताइए। ये जो इंट्रो है, इसे आप इंट्रो कहते हैं, ये इंट्रो बेसिकली मूर्तिकला के विकास से संबंधित प्रश्न के उत्तर के लिए तो थोड़ा बहुत ठीक हो सकती है, लेकिन इसके उत्तर के लिए इसका क्या अर्थ है? सीधे सीधे मध्यकाल की बात की जा रही है, मूर्तिकला की बात की जा रही है और सामाजिक जीवन की बात की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि उत्तर लिखने वाले को थोड़ा सा आभास हुआ कि यार ये तो मामला कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, तो आखिरी में जाकर के उसने लोक जीवन का प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देने लगती है ये वाक्य जोड़ दिया, लोक जीवन का प्रतिनिधित्व। ठीक है, लोक जीवन में सामाजिक जीवन आ जाएगा। यही तो आपको लिखना है कि वो किन किन का प्रतिनिधित्व कर रही है और किस प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रही है। अब आप देखिए कि ये जो शुरू का जो पैरा है जिसे आप इंट्रो कहते हैं, मालूम है कितने शब्दों का है? लगभग 60-70 शब्दों का ये पैरा है, अर्थहीन पैरा है, जिसका कोई अर्थ नहीं और सच पूछे तो अनर्थ है। ये पैरा एक प्रकार से एग्जामिनर को इरिटेट करेगा, याद रखिए, एग्जामिनर को इरिटेट करेगा। एग्जामिनर के दिमाग में बिल्कुल यह तथ्य स्थापित कर देगा कि इस स्टूडेंट को प्रश्न समझ में नहीं आया है और कुछ भी लिखता चला जा रहा है और आगे भी वो कुछ इसी तरह से लिखता चला जाएगा, हालांकि वो आपके उत्तर को पढ़ेगा। यूपीएससी का एग्जामिनर इतना सिंसियर होता है, आपके उत्तर को छोड़ नहीं देगा, इसी के आधार पर वो धारणा नहीं बना लेगा, आपके साथ थोड़ी सी यात्रा करेगा, लेकिन उसका मूड तो आपने खराब कर दिया और बहुत आपने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया है, मूर्तिकला के बारे में जो भी मैं जानता हूं वो मैं आपको परोस रहा हूं। अब आप इसमें अपने ढंग से ढूंढ लीजिए कि आप जो जानना चाह रहे हैं उसमें है या इसमें नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये है, बात खत्म हो गई। तो दोस्तों, मैं भी आज की बात को अब यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।